ृत्यं दैपायनो विरह कातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया करवो सर्वभूतहृदयं मुनिमान् कृष्ण तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम् नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीश्रीमद्भक्ति प्रज्ञानकेशवैति नाम्ये पतिमर्तचरित्राय श्वासितानां च पालिने जीवदुःखे सदाकाय नाम प्रेमप्रदाने हमारे परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म जी का विरह तिथि सवेरे से लेकर दोपहर में ही गुरु महाराज जी के संबंध में बहुत से वक्ता लोग आए थे, कुछ उन लोगों ने वर्णन किए, मैंने भी संक्षेप में कुछ उनके संबंध में बतलाया। अभी भी बहुत कुछ उनके संबंध में जानना है। उनका जीवन विविध वैशिष्ट्यमय था। अभी हम लोगों के बीच में श्रीपाद भक्ति विदान वैष्णव महाराज हैं, उनके संबंध में कुछ थोड़ा सा वर्णन करेंगे बोलेंगे, इसके बाद में मैं फिर उनके संबंध में कुछ कहूंगा। कुछ बताया था, अभी बंगला भाषा जानने वाले थोड़े कम हैं, हिंदी वाले ही अधिक है, इसलिए हिंदी भाषा नहीं बोलता। और कल से हम लोग बंगला में बोलेंगे, और भी 100-150 आदमी आ जाएंगे, उनकी जनसंख्या अधिक हो जाएगी, इसलिए आज इस समय हिंदी में ही बोलता हूँ, कल से बंगला बोलूँगा। उनके जीवन चरित्र के संबंध में हमने कुछ बतलाया। गुरुजी का आविर्भाव आजकल बांग्लादेश, उस समय बरिशाल जिला में
बनारीपाड़ा
में उनका आविर्भाव हुआ था। पिताजी बड़े धार्मिक थे, अधिकांश रूप में जिनके माता पिता धार्मिक होते हैं उनके पुत्र धार्मिक ही होते हैं। कभी कभी हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद महाराज जी हुए, और प्रहलाद के पुत्र विरोचन जी हुए, और विरोचन के पुत्र फिर
बलि महाराज।
यहाँ पर कुछ उल्टा देखा जाता है, कभी कभी हो जाता है, किंतु वो दैववश हो जाता है, किंतु अधिकांश रूप में माता पिता का पुत्र माता पिता जैसा ही धार्मिक अथवा अधार्मिक हुआ करता है। इनके पिताजी परम धार्मिक थे, विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्यों में से ये थे। विजय कृष्ण गोस्वामी उस समय के बड़े भारी योगी और धार्मिक पुरुष थे, पीछे से महाप्रभु जी के संप्रदाय में आ गए थे। वो ऐसे थे विजय कृष्ण गोस्वामी, जब विद्यासागर जी की मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा जा रही थी, तो उन्होंने वहाँ से 1-2000 मील दूर से देखा, मेदिनीपुर में वो गए विद्यासागर, और वो थे वहाँ बरिशाल में ढाका के पास में, वहाँ से कहा, अरे देखो तो ये विद्यासागर जी जा रहे हैं, ये स्वर्ग में जा रहे हैं। उसी समय में टेलीफोन के द्वारा पूछा गया, तो जो सचमुच उसी समय में उनका देहांत, तो वो लोग आत्मा का दर्शन करते हैं कुछ योगी लोग भी। तो वो योगी से फिर महाप्रभु जी के प्रभाव से फिर से वो गौड़ीय वैष्णव के रूप में हुए हुए थे। उन्हीं के परंपरा में उनके शिष्य के शिष्य इनके पिताजी थे, इसलिए बचपन से ही परम धार्मिक थे। बचपन से बड़ी संगठन शक्ति उनमें थी, अंत तक हम लोगों के समय तक भी उनमें संगठन शक्ति बनी रही है। जहाँ रहे सब लोग उनके अनुगत हो जाया करते थे, सब विषय में एक्सपर्ट थे। बचपन में उन्होंने ग्राम्य कल्याणकारी संघ एक स्थापित किया, जिसमें दरिद्र के जितने थे गांव के, जिनको खाने पीने के लिए जुटता नहीं था, उन लोगों के लिए एक कोष तैयार किया, जिसमें अन्न रुपया पैसा कपड़ा चुपे चोरी वो लोग इकट्ठे करते थे और किसी को जानने नहीं देते थे जो किसको दिया। रात के समय में गुरुजी उन चीज़ों को उन दरिद्रों के यहाँ गरीबों को पहुँचाते थे, समाज की सेवा करते। उस समय बचपन में छोटी स्थिति, जबकि वो 11-12 वर्ष के थे तब, जिस समय कि वो पढ़ लिख रहे थे। एक समय उनकी माताजी बड़ी कड़ी थी, पिताजी बड़े नम्र और कोमल स्वभाव के थे, वो कभी किसी को डांटते फटकारते नहीं थे, किंतु उनकी माता जो ऐसी थी, बड़ी कड़ी थी, जमींदार की लड़की थी, बहुत बड़े जमींदार की लड़की थी। तो उसी तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण भी उन्होंने किया, जमींदार की लड़की की भांति। वो एक तरह से रानी जैसी थी, परम सुंदरी थी, उनके लड़के भी ऐसे सुंदर थे। वो जबी शाम को, जबी सूरज अस्त होने के बाद में, ये चार भाई थे, उनमें कोई यदि बाहर में चला जाता तो पूछती थी बुलाकर, तू कहाँ था, और यदि उत्तर न दे तो शासन करती थी। उनके डर के मारे सभी लोग पिताजी से नहीं डरते थे, किंतु उनसे डरते थे। बच्चों की सब शिक्षा उन्होंने दी थी। तो एक दिन ये बड़े देर से 9-10 बजे रात में आए, तो उनकी मैया ने उनको एक हाथ में ले लिया लठिया, बेन जसोदा माँ की भांति, और उनसे पूछा, तू कहाँ था बतलाओ, अभी तक तू क्या कर रहा था। वो बोल नहीं रहे, तू बोलता क्यों नहीं है, तो बतलाओ जी तू कहाँ गया, फिर भी नहीं बतला रहे। कहे तू बतलाएगा कि नहीं बतलाएगा, अभी तुमको हम पीटेंगे, तुम बतलाओ ठीक ठीक ये तुम कहाँ थे। कहे मैया, गांव में एक औरत है, चार दिन से कुछ नहीं मिला उसको खाने के, उसके पास कपड़े भी नहीं हैं, और उसको बुखार हो रहा है बहुत तेज, कोई देखने वाला उसका नहीं है। मैं आज गांव से किसी धनी के घर से कुछ मांग लिया, और स्कूल में हमको जाने पर तू पैसा कुछ देती है, उसको मैं कभी भी नहीं आज तक खाया कुछ, वो जमा करके हम रखे हैं, उसमें से वो रुपये लेकर और किसी के घर से कपड़ा लेकर और डॉक्टर से जाकर के उसको दिखलाया, डॉक्टर को फीस दिया, और बड़ी तेज बुखार में उसको दे करके खिला पिला करके अब मैं आ रहा हूँ। ये सुनते ही उनकी मैया एकदम रो उठी और उनको गोदी में, फिर उनको क्या शासन करे, वो खुद ही रोने लगे, बेटा तू धन्य है। पिताजी कहते, हमारे गुरु जी कहते थे, जब माता ने हम लोगों को ऐसी शिक्षा दी कि आज जीवन भर उसकी शिक्षा लेकर के हम लोग चल रहे हैं। पिताजी के हाथों में, पिताजी का हाथ पकड़ लेते, और जहाँ जहाँ धर्म सभाएं होती उनके साथ में गीता का क्लास, भागवत का क्लास होता, उनमें चले जाते, और बच्चे नहीं जाते, उनके बड़े भाई औरलोमी महाराज थे, वो नहीं जाते, दूसरे लड़के सब थे नहीं जाते, किंतु पिताजी के हाथ पकड़ करके और पिताजी इनको कभी कंधे पर लेकर के जहाँ जहाँ सभाएँ होती धर्म की वो जाते थे और बड़े चित स्थिर चित्त से सबको सुनते थे। जब और कुछ बड़े हो गए तो स्कूल से कॉलेज में गए, पिताजी का फिर देहांत हो गया, जमींदारी का जितना भार था इनके ऊपर में हुआ और लड़कों के ऊपर में नहीं दिया, और ये जमींदारी स्टाइल से खजाना वसूल करना, लोगों को सब देखना सुनना सब ये करते थे। 16 वर्ष की अवस्था में पूरी जमींदारी और सब स्टेट को देखना सुनना ये सब करते थे। वो कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ दौलतपुर, उसके पहले में कलकत्ते के पास में उत्तर पारा कॉलेज में वो भर्ती हुई। उस समय में 16 वर्ष की अवस्था में 1915 में ये मायापुर में अपनी पीसी में अपनी बुआ जी जिनका नाम सरोज वासनी था वो आए थे केवल दर्शन करने के लिए। पिसीमा माने बुआ जी, मैं आपके गुरु जी का दर्शन करना चाहता हूँ। कॉलेज से ही बड़े प्यार से वो ले आए। प्रभुपाद जी उनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उस समय मठ में मंदिर में कोई अधिक व्यक्ति नहीं था, नरहरि प्रभु पूज्यपाद नरहरि प्रभु थे, वो मठ की माता थे। ब्रह्मचारी लोग सो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे 5-5, 6-6, 7-7 वर्ष के बच्चे पेशाब कर देते हैं, टट्टी कर देंगे, उनको देखभाल खिलाना पिलाना, सो जाते हैं उनको उठा करके फिर खिलाएंगे, वो ऐसा थे। और दिन भर रात भर हरे कृष्ण करते रहते थे, आदर्श पुरुष। सब मठ के लोग उनको आदर करते थे, पढ़े लिखे कम थे किंतु ऐसा आदर्श चरित्र जो प्रभुपाद जी घंटा कासर बजाते थे और वो अर्चन करते थे, और कोई बहुत कम लोग थे मायापुर में। उस समय में गुरु जी आए थे, सरोज पिसी माँ कहा करती थी बुआ जी हम लोगों की लगती थी, वो कहती थी ये प्रभुपाद जी एक दिन कह रहे थे उन लोगों से, ये मैं नवद्वीप के 9 द्वीपों में एक एक मठ करूंगा और भारतवर्ष में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं कलकत्ता बम्बई मद्रास और सब, और जितने तीर्थ स्थान हैं सब जगह चैतन्य महाप्रभु के लिए मठ स्थापन करके और सर्वत्र हरिनाम का प्रचार करूंगा और सर्वत्र ही महाप्रभु जी के प्रेम धर्म का प्रचार करूंगा। पिसी माँ ने उनसे पूछा, कोई व्यक्ति सोते हुए लाख रुपए का स्वप्न देखता है,
छड़ा का था घूमिए लाख का स्वप्न देखता है,
फटे हुए क्या वो गुदड़ी के ऊपर में सोता हुआ कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति देख रहा कि मैं राजशाह शाहनशाह बन गया, वो ऐसे आप कर एक ब्रह्मचारी नहीं, एक कोई व्यक्ति नहीं, क्यों नरहर प्रभु और भक्ति विलास तीर्थ महाराज का नाम था कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु, वो भी गृहस्थ थे, उस समय ब्रह्मचारी नहीं, यही 2-4 आदमी हैं, अरण्य महाराज एक थे, वो लोग तो कोई है नहीं और आप सब जगह मठ करेंगे, कहे है क्यों नहीं, तो अभी पहले अभी परस आए हैं, गुरु जी के हरिनाम और दीक्षा कुछ नहीं हुआ, बड़े दिखने सुंदर में बड़े सुंदर अद्भुत। उनकी माता उनका नाम रखती थी जोनाकी, जोनाकी माने ज्योत्सना, ज्योत्सना जैसे चंद्र की अद्भुत सुंदर होती है ऐसे सुंदर थे गौर वर्ण के, इसलिए उनकी मैया ने उनका नाम रखा था। उनको पकड़ करके ले आकर के कही, अरे ये हमारा विनोद जो है ना ये सब मठ को हमारा देखेगा और हमारा प्रचार कार्य। उसी समय उनको ग्रहण कर लिया, उसी समय उनको हरिनाम दिया। हरिनाम देने के बाद में फिर पिसी माँ के साथ में चले आए और फिर कॉलेज में गए। 1919 में कॉलेज के अध्यापकों से इनका विवाद हो गया, वो लोग जो पढ़ाते थे जड़ विद्या पढ़ाते थे, धार्मिक शिक्षा में चैतन्य चैतामृत उस समय में उन लोगों का एक सब्जेक्ट था चैतन्य चरितामृत। जैसे आजकल बहुत जगहों में गीता का रख देते हैं, वैसे वहाँ के कॉलेज में विश्वविद्यालय में मान्यता थी चैतन्य चरितामृत। उल्टा सीधा अर्थ करते थे इनके जो अध्यापक थे और प्रिंसिपल, उन्होंने उनका प्रतिपाद किया, जिन्हें ऐसे ना ऐसे वो। एक श्रीमद्भागवत में श्लोक है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्द। ये अद्वैत ज्ञान परतत्व कृष्ण है। अद्वैत ज्ञान परतत्व किसको कहते हैं? कोई भी प्रिंसिपल का प्रिंसिपल क्यों न हो, संसार में जितना भी लिखा पढ़ा करने वाला हो, ये सब उनके समझ में नहीं आएगा। जो गूढ़ दार्शनिक तत्व हैं और प्रेम के तत्व है वो लोग नहीं जान सकते, वो तो गुरुमुखी विद्या है उससे आए। इन्होंने प्रभुपाद से कुछ सुना था, बीच बीच में जाते थे, किंतु घर में रह कर कभी पढ़ रहे थे, उन्हीं के आदेश से उन्होंने सुंदर रूप से उसकी व्याख्या की। ये सब के हम क्या पढ़ेंगे, जब इन्हीं को हम पढ़ा रहे हैं तो इनसे हम अब क्या पढ़ना है। बस छोड़ करके कॉलेज 1919 में फिर चले गए प्रभुपाद के यहाँ, और प्रभुपाद जी से उन्होंने उसी समय दीक्षा लेकर के घर को छोड़ दिया सदा के लिए। छोड़ने के बाद में उनके मैया उनके लिए पागल हो गई, अंत में बड़ी जोर से बीमार पड़ी। उन्होंने प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को एक पत्र दिया, मैं अब कल परसों में या आज ही मर जाऊंगा, कोई ठीक नहीं है, हमें दो एक दिन मध्य मारा जाओ। हमारी इच्छा छिलो, हमारी इच्छा थी जे आ एक बार विनोद को हमारे पास में भेज दिए, मैं उसका दर्शन करके ठीक चल गया। प्रभुपाद जी देख करके चिट्ठी बड़े चिंतित हो गए, चिंतित होकर के विनोद को बुलाया, बिना सुनो सुनो आए गुरु जी हमारे, उस समय ब्रह्मचारी थे, उस समय में 17-18 वर्ष की उम्र। अगर तुम्हारी मैया ने ऐसा लिखा है कि तुमको बुलाया है, अंतम में तुम्हारा दर्शन करना चाहिए, तुम जाओ एक बार भेंट कराओ। कब जाएगा? अभी जा रहा है तो अभी जा, अभी चले जाओ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, प्रभुपाद आदेश दे करके फिर अपना चले गए भजन करने। अब ये जब शाम हुई रात हुई तो प्रभुपाद जी ने मठ कमांडर को बुलाया, बुला करके जब विनोद देखो तो उसको कहा था जब उसकी मैया से भेंट कराए तो वो चला गया है कि नहीं, तो उसने कहा जैसा अच्छा मैं देखा हूँ। खोजते 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 देखा जे कोने में बैठे हुए अंधकार गए, जाकर के प्रभुपाद से कहा जी तो गया नहीं, अतः उसे बुला लो। बुला करके ले आए, उन्होंने पूछा जब तुमको कहा था जाने के लिए तू गया क्यों नहीं। उन्होंने कहा बड़ी नम्रता से प्रभुपाद जी को प्रणाम करके, प्रभु हमने सुना है कोटि कोटि जन्मों से जीव घूम रहा है संसार में, कोटि कोटि बार माता पिता भाई बंधु सब मिले हैं, जन्मे जन्मे माता पिता सकले सबे पाए, गुरु वैष्णव नहीं मिले भजो हो गया, कोटि कोटि जन्म तखन घूम रहे हैं, कोटि कोटि बार माता पिता हुए हैं, भाई बंधु विवाह शादी इत्यादि भी हुई है, किंतु हमको उद्धार करने वाला कोई भी वैष्णव गुरु नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से इस जन्म में आप जैसे परम भागवत गुरु हमें मिले हैं, मैं यदि आपकी बात मान करके चला जाता मैया के यहाँ, और मैया जब अंतिम श्वास छोड़ने के समय में यदि कहती जे बेटा अब तो मैं मर नहीं हूं, तो मैं मर जाऊंगी, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, अब तुम मेरी एक बात रखना, तुम चले आना घर में विवाह शादी करके, अब घर को देखना, यही मेरी इच्छा है। ये कह करके यदि चली जाती तो मैं क्या करता, मैं तो फिर संसार में पड़ जाता, फिर आपकी सेवा नहीं कर सकता था और संसार के जन्म मरण से ऊपर नहीं जा, और मैया का भी कुछ कल्याण नहीं होता। ऐसा सोच करके नहीं गया और ये कह करके चुप हो गया। प्रभुपाद जी के आंखों से आंसू आ गए। ऐसा व्यक्ति ही हरि भजन कर सकता है, ऐसी सच्ची लगन हो, दृढ़ता हो, तब भजन होगा। कोटि कोटि असंख्य जन्मों के बाद में, जब से ये सृष्टि है तभी से हम लोग इस संसार चक्र में घूम रहे हैं, किंतु आज तक ऐसा मौका नहीं, आज इसी जन्म में हमारा यह मौका मिला है कि गुरु वैष्णव से संग हो गया और इस जन्म में इसको चुक गए, लाखों कोटि जन्म के लिए फिर हम संसार में फिर उद्धार होना मुश्किल है। इस बात को जो समझेगा, उपलब्धि करेगा, वह व्यक्ति कुछ समस्त एनर्जी अपनी दे करके भगवान का भजन कर सकता है। ऐसा आदर्श व्यक्ति ही भजन कर सकता है उस रूप में। फिर बचपन में ही अपने ग्राम में रह करके धर्म रक्षणी सभा उन्होंने की थी, उसमें गीता भागवत इत्यादि का प्रवचन होता था, उसमें सब लोगों को सुनने को अवसर मिलता था। उन्होंने बचपन में ही स्कूल में रहते हुए उन्होंने एक पत्रिका बाहर की थी मासिक, उसका नाम था प्रसून, भगवत भक्ति संबंधी लेख सब बच्चे लिखते थे, हाथ से लिख करके वो पत्रिका चलती थी। बड़े योग्य साहित्यिक थे गुरु जी, कैसी सुंदर भाषा लिखते थे, जो गौड़ीय हमारा हम लोगों का है, पहला वर्ष पहला विरह मंगल और उनके जो लेख हैं, बड़े अद्भुत वो चीजें हैं, हिंदू संस्कृति की वो धरोहर है हम लोगों की। भाषा इतनी सुंदर, अनुप्रास अलंकार पीछे पीछे दौड़ता रहता था और साथ साथ में विचार प्रधान होता था। परिक्रमा हो रही है नवदीप धाम की, जिसमें कि कम से कम तो 8-10 हजार लोग आए हुए हैं और हम लोग तो जहाँ 10-5 की भीड़ हो जाए, अभी मैं कुछ न चिट्ठी लिख सकता हूँ, न प्रबंध लिख सकता हूँ, न कुछ, हरिनाम ही नहीं होता। और वो इतने आदमियों से घिरे रह करके, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई पूछ रहा है, कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऊंट मठ से आया, कोई ऊंट मठ से आया, वहाँ की समस्या दे, कोई पैसे दे रहे हैं, कुछ प्रणाम में ये सब कर रहे हैं। और उस समय में अभी अभी प्रबंध लिखवाना है गौड़िया में छप करके, तो कल नृसिंह देव के यहाँ जाना है, पुस्तक अभी बांधना है अभी सब। और उसी समय में बामन महाराज जी बैठे रहते थे पूज्य पाठ में, कदे कलम धरो, वो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे वहाँ पर बैठे हुए हैं, जा नहीं सकते, कहे कब ये लिखाएंगे। और उसी में से जहाँ थोड़ा सा समय मिलता ना, बस झट आरम्भ करते, इतनी जोर से गाड़ी चलती उनकी, बोलते 15-20 मिनट में 5-6 पृष्ठ एकदम सब लिख देते, इतना दार्शनिक और सुंदर और अच्छा जो कहा। फिर से वो देखते नहीं थे ये क्या हमने लिखवाया, वो ब्रह्मा की रेख हो गई। अब ब्राह्मण महाराज जी के लेखने में ऐसा कौशल, उसमें कोई भूल ही नहीं होगा, जैसा बोला है वैसा ही ठीक है, कोई हर्ष दीर्घ बनान इधर उधर कोई भूल। और दूसरे दिन पुस्तक छप करके तैयार हो गई और चली। तो इस तरह से वो बचपन से ही ऐसे थे। जब मठ में आए ना, एक समय में लोगों से सुना गौरकिशोर दास महाराज के संबंध में, तो ये प्रभुपाद के पास में गए, बोले जैसे मैं परम गुरु जी का दर्शन कर रहा, हमने देखा नहीं है उनका, आपके जो गुरु हैं वो कैसे हैं, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। आंख के अंधे किंतु हृदय की आंख वाले, राधे राधे उठाए गो प्रेममयी राधे, जमुना के उस पार से करते तो इस पार में सुनाई देता, और न जाने कैसे इतना दूर चल लेते थे, अंधकार में नवदीप से मायापुर में पहुंच जाते थे और उस समय कांटा वन जंगल उसमें पहुंच जाते थे। नवदीप के इस पार में एक धर्मशाला थी और उसमें जो टट्टी थी, टट्टी में वो किवाड़ बंद करके भीतर में बैठे हुए थे। कजी इन विषय लोगों में रहना और रह करके भजन करना बड़ा कठिन है, इन लोगों का इतना दुर्गंध, बल्कि टट्टी का दुर्गंध है वो हमारे लिए अच्छा है, बस उसको बंद कर दिया और नीचे में टट्टी पड़ी हुई तो उसमें बैठ करके हरे कृष्ण कर रहे हैं, बड़े विरह के साथ कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर, पुलिस सुपरिंटेंडेंट सब लोग आए, बाबा जी महाराज आप दरवाजा खोल दीजिए और हम लोग आपके लिए एक सुंदर कुटी बना देंगे, नहीं तो इसको साफ करा देंगे। आमी अत्यंत असुस्थ, आमी नड़ते पारछी ना, मैं बहुत ही असुस्थ, मैं उठ नहीं सकता, नहीं खोलते थे हम लोग रहते तो अभी अभी आ जाए ना कोई बड़ा अफसर ना, अरे बड़ा अफसर के कोई पुलिस का यदि दारोगा भी आ जाए, सब इंस्पेक्टर भी आ जाए तो हम तो अपना भाग्य समझेंगे, ये सब इंस्पेक्टर हमसे मिलने के लिए आया। कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ जाए तो हम उठ करके खड़े हो करके चले जाएंगे उनसे, उनको बड़े प्रेम से ले आएंगे। इन लोगों को कोई मतलब नहीं उनसे, न धन से मतलब है, न प्रतिष्ठा से मतलब है, उनको भजन से मतलब है, भक्तों से मतलब है, इन लोगों से कोई मतलब नहीं। आकर के बहुत कहते सुनते हुए नई दरवाजा खोला चले गए। दूसरे दिन हमारे गुरुजी कोई पिशी माँ सरोज पिशी वासनी और गौर गोविंद विद्या विनोद प्रभु, पीछे से उनका नाम नेमी महाराज थे, नेमी महाराज हुआ था ये बड़े भारी वक्ता थे हमारे। जबकि दार्शनिक भाषण होता था तो प्रभुपाद जी इनको कहते थे जाने के लिए, जाओ उस सभा में वक्तृता दे, और साधारणों को में जब वक्तृता देना होता था तो भारती महाराज को, हमारे त्रिदंडी महाराज का द्वितीय एडिशन, सब लोगों को जाते ही सब लोग अपने आप हंस देंगे और ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, हरी कथा बोलेंगे, सबको मन को मुग्ध कर देंगे, किंतु विद्वत समाज में वो नहीं चलेगा, कोई नहीं सुनेगा, किंतु वो लोग तो विद्वान थे, उनकी भी सुनेगा। तो गौर गोविंद प्रभु जी उनके साथ में गए और भी दो एक आदमी गए, बाबा जी महाराज अपना दर्शन करवा जन्म हम ऐसे छी, आपके दर्शनों के लिए हम लोग आए, दरवाजा खोलो ने तू दर्शन कर। आमी अत्यंत असुस्थ, आमी नड़ते पारछी ना, मैं खोल नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, मैं दिखा रहा। हमारे गुरु जी ने कहा हमारा सरस्वती ठाकुर अनुगत तार कृपा पात्र तहार आदेश नहीं हमारा ऐसे छी, हम लोग सरस्वती ठाकुर जी के कृपा पात्र हैं, उनके शिष्य हैं, आपके दर्शनों के लिए। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, सरस्वती ठाकुर तुम्हारा शिष्य, ऐसो ऐसो ऐसो, बस दौड़ करके उन्होंने खोल खोल करके ये भीतर चले गए। किसे जन्म ऐसे छो, अपना कृपा जन्म, कृपा जन्म ऐसे छो, ठीक है, तुम्हारे हाथ माथा यानी हाथ रखला, तुम्हारे सिर पर मैंने हाथ रखा, तुम्हारे समस्त जीवन की जितनी भी विपत्तियां हैं वो सब मैंने तुमका ग्रहण कर लिया। बड़ी बड़ी विपत्तियां आ सकती हैं किंतु वो सब हमारे आशीर्वाद से सब दूर हो जाएगा, तुम खूब अच्छी तरह से भजन करो और अपने गुरु जी के अनुसार में तुम प्रचार करो और उनकी तुम सेवा करो, बस आशीर्वाद दिया। गुरु महाराज जी फुट फुट करके रोते थे, या आज हमारे ऊपर में बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, समाज हमारा विरोधी हो गया और हमको प्रचार में जैसे गए थे आसाम में, एक जगह बड़ी भारी सभा लगी आसाम में, कौन सा गांव था अभी, ये लोग सब नहीं आए थे, हम लोग गुरु जी के साथ में 20-25 सन्यासी ब्रह्मचारी सब हम लोग वहां पर गुरु जी के साथ में गए थे और गांव वाले वहां के सब उनके साथ में थे, करीब करीब 50 आदमी हम लोग थे उस सभा में और गांव वाले प्राय 10-20 हजार थे, वो लोग हंकरदेव को मानने वाले, हंकरदेव कृष्ण को मानते हैं, श्रीमद् भागवत में उन्होंने आसामी भाषा अहमिया भाषा में लिखा है तो उसको वो मानते हैं, कृष्ण को तो मानेंगे किंतु प्याज लहसुन या मांस मछली सब खाते हैं, और अकेला कृष्ण को मानते हैं, राधा जी को नहीं मानते। उस भरी हुआ सभा में गुरु जी ने कहा जो लोग मांस मछली खाते हैं वो कभी भी भगवान का भजन नहीं कर सकते। उनका मुख वह नाली के समान है जिसमें मल मूत्र सब बहता है। बस वहां के जितने लोग थे सब एकदम हंकर दे के मानने वाले, सब विरोध में खड़े हो गए, ईंट पत्थर सब चलाने लगे। उन्होंने कहा कि ईंट पत्थर को हम लोग नहीं कुछ गिनते हैं, अरे प्राण हमारे हथेली पर लेकर के हम लोग भगवान की कथाओं का प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, भगवान है तो प्रणाम प्रमाण कीजिए, तब हम लोग आपकी बात सुने। गुरु महाराज ने त्रिविक्रम महाराज जी के तर्क में इशारा किया, उनके नोटबुक में 40 प्रमाण थे, बझड़ाझड़ पढ़ना आरम्भ कर दिया, वेदों से, उपनिषदों से, श्रीमद भागवत से और सब जगहों से, ब्रह्म जामल, कृष्ण जामल इत्यादि से, जीव गोस्वामी और सबके विचारों को लेकर के जब पढ़ना आरम्भ किया, एकदम सब लोग एकदम चुप हो गए। फिर कहने लगे, हम लोग इन प्रमाणों को भी नहीं मानते हैं भागवत, तो भागवत को नहीं मानता है और कुछ को नहीं मानता है तो फिर तुम लोग क्या बातचीत करेगा। गांव वाले सब गुरु जी के तरफ पहुंचे, यदि तुम लोगों ने कुछ किया तो हम लोग भी तुम्हारे विरुद्ध में। उन्होंने पत्थर उत्थर चलाना आरंभ किया, बस वहीं पर ये लोग खड़े हो गए। इसके बाद में सभा शांत हो गई, फिर चल। ऐसे साहसी थे, निर्भीक वक्ता थे सत्य के, समाज के किसी भी व्यक्ति से वो डरने वाले नहीं थे। यदि ऐसा होगा तब कोई भजन कर सकता है। किसी समय में नवदीप में एक ग्रेजुएट लड़का MA पास करके एक तारा का, उसका नाम था
वृंदावन,
वो आया इंजीनियरिंग पास करके, उसको 5,000 रुपया उस समय में मिल रहे थे, जो नौकरी छोड़ करके आ गए। घर वाले सब आ करके गांव वाले गुरु जी पर अत्याचार कर, आप कह दीजिए चला जाए,
विश्वनाथ राय
कहिए आप चले, कह दीजिए इस बच्चे को जो चला जाए। मैंने कहा हम तो इसको बुला करके नहीं लाए, हम कैसे कह देंगे नरक में जाए, इसलिए हम कह नहीं सकते। जो कुछ तुम लोगों को करना है इसको ले जाओ, मारो पीटो, और भी हमारे सामने तुम लोग इसको समझा बुझा करके ले जाओ। समझाया बुझाया किसी तरह से बुझ गया। अंत में कुछ दिनों के बाद में गुरु महाराज जी का प्रकट होने के बाद में फिर अपने आप चला। यदि वैसी सुकृति और संस्कार नहीं रहेंगे, लाभ करने पर भी वो ऐसा नहीं कर सकता। बहुत बुद्धिमान और बहुत ही अच्छा लड़का था, किंतु फिर भी पूर्व जन्म का संस्कार नहीं रहने से ऐसा। इसलिए कभी भी अन्याय के विरुद्ध में उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया, ऐसे थे। ये मायापुर की कैसी सेवा की, मैंने बहुत बार ये बतलाया है। वहां पर मायापुर माने मियापुर उस समय नाम हो गया था, मुसलमानों ने बदल दिया मायापुर का नाम मियापुर, और वहां पर कब्रगाह तैयार कर दिया महाप्रभु के जन्म स्थान के ऊपर में। किंतु कब्रगाह करने पर भी वहां पर तुलसी उगती थी। यहां भी प्रभुपाद की समाधि है, वहां पर उन्होंने ऐसा किया था, हजारों उन्होंने कब्रगाह बना लिया था। प्रभुपाद जी बड़े दुखी थे, हम लोग यहाँ पर भजन कर रहे हैं, यहाँ पर कब्रगाह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इस सबको हटा करके और यहाँ पर शुद्ध वातावरण यहाँ पर तैयार कर दे और ये सब बच्चे लोग सब लोग भजन करें। गुरु जी ने कहा जी ठीक है। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। उस समय ब्रह्मचारी थे, उम्र होगी 22-23 वर्ष की, किंतु अद्भुत मेधा और निर्भीक जो बतलाया। उन्होंने क्या किया, रात ही भर में वो सब कुछ वहां से हटाकर पहले दिन एक प्राचीर दिया। मुसलमान लोग आकर के बोले, भाई प्राचीर किस लिए दे रहे हैं, प्राचीर मैंने तुम लोगों का ये सुरक्षित रखने के लिए ये कर रहे हैं, जैसे इसमें कोई हिंदू लोग ना आए,
तुम्हें नमाज पढ़ोगे
और आकर के तुम आराम से ये सब अपना धर्म कृत्य करना, तब लोग चुप। दूसरे दिन रात में बस सबको उखाड़ फुकार के फेंक करके और 5-5, 7-7 आम के पेड़, कटहल के पेड़ और सब पुराने वो सब पहले से सब ठीक था लेकर के रात में फूल के पेड़ एकदम पूरा प्राय 2-4 एकड़ एकदम सब में एकदम भर। दूसरे दिन आकर कहा ये क्या हुआ, SP DSP और सब लोग बड़े बड़े आए, अरे भाई हम लोगों का तो ये कितने वर्षों का देखिए आज का ये पेड़ है, वो ऐसे ही करते रह गए, फिर कुछ नहीं हुआ तब से। सब लोग उनसे बड़े डरते थे। उस समय प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे छोटे छोटे बच्चे, तो वो तो घर हमारे यहाँ देखते हैं ना जो बर्तन मजते हैं ये लोग, आज पत्ता जितना हुआ कौन फेंका साफ किया, ये बड़े बड़े घरों के ग्रेजुएट लड़कों ने आज ये सब साफ किया, रसोई भी वही बना रहे हैं, सब कुछ मटका काम कर रहे हैं। वैसे उस समय में मटके ब्रह्मचारी सब काम करते थे पहले से, ऐसा करके तब गुरु सेवा करते हुए तब आगे चलेंगे। तो वो मुसलमान लोग उनको चिढ़ाते थे कभी कभी। वो एक नाद होता है, नाद माने मट्टी का बड़ा बर्तन, उसकी जरूरत थी वहां से कुमार के घर से लाना। ये सब सुकोमल बच्चे हमारे गुरु जी और सब जाते थे, उसको अपने सिर पर रख करके लाते, वो सब कहते थे, या साधारण हिंदू समाज के ही दूसरे लोग कहते, हाय हाय यही सरस्वती इधर के की मंत्र दिए पागल कर दिए, यही चाकर बनिए दिए छे नौकर बना लिया है, और सबको बेवकूफ बनाकर इनके सिर पर कटहल तोड़ करके खुद खाता है, और ये सबको बेवकूफ बना दिया, और ये भी ऐसे बेवकूफ जो यहाँ पर बर्तन मजते हैं, कहाँ वो बड़े बड़े ग्रेजुएट पढ़े लड़के बड़े बड़े धनी घरों के, और ये सब बर्तन माज रहे हैं, कोई झाड़ू दे रहा है, कोई इनसे सिर पर रख करके और ये सब ला रहे हैं, हाँ हाँ। इनका जन्म बेकार का, ये ऐसे बेवकूफ कैसे हो। वो लोग उसी समय ऐसा ही समझते थे। कुछ लोग संसार भी लोग भी ऐसा समझते हैं, ये मठ में लड़के जो आए ये सब पढ़ लिख करके जाने क्या बेवकूफ हो गए जो ऐसे ऐसे कर, किंतु इससे एक दिव्य जीवन उनको मिलेगा, वो लोग बैकुंठ वृंदावन में पहुंचेंगे इस सेवा के द्वारा, उनकी ये कल्पना नहीं। गुरु महाराज जी पीछे से जब वहां का जमींदारी का भार लिया और जब शासन किया दो चार लोगों को, तब लोगों ने समझा ये क्या चीज है। सब लोग थर थर कांपते थे उनके डर के मारे, किसी को मारा नहीं, जैसे ये कहा ना किसी को मारते नहीं थे, किंतु सभी लोग डरते थे उनके शासन से। हमने देखा है जब मैं सबसे पहले आया तो वो गुरुजी वहाँ छोड़ करके नवदीप में मठ रखा था। प्रभुपाद के जितने भी शिष्य आते थे बड़े बड़े धुरंधर लोग, गुरु महाराज के सामने कुछ नहीं कहते थे, और उनके सामने चेयर पर या किसी आसन पर नहीं बैठते थे, उनका बड़ा गुरुवत सम्मान करते थे। बड़ी बड़ी सभाओं में कैसे साहसी रूप से उनको ले जाते थे सभी लोग और उनका आदर करते थे। और भी उनके संबंध में बहुत सी बातें हैं, जे कैसे बैराग्य से माधुकरी भिक्षा करते थे, कैसे अपने गुरु भावों पर भाव रखते थे। 4 मील हावड़ा स्टेशन से और नारकेल डांगा में हम लोगों का प्रभुपाद जी के समय मठ था, तरकारी यहाँ से लेकर के बोरे में 2 बोरा रखा है। पूज्यपाद सिद्धांति महाराज उनका नाम था उस समय में
सिद्धस्वरूप,
और गुरु जी उनको मठ में लाए थे, दोनों गए। सिद्धस्वरूप जी का उम्र थोड़ा सा कम था, वो कहते मैं पढ़ा लूंगा, गुरु जी कहते थे जब मैं पढ़ा लूंगा, दोनों में छीना झपटी होती। गुरु महाराज जी जरा बड़े थे, वो बड़ा वाला को ले लेते थे। सिद्धस्वरूप ब्रह्मचारी जी कहते थे जे प्रभु आपने ये रकम कहने कर लेना, आपने ऐसा क्यों किया, मैं बड़ा लूंगा, आप हमारे पूज्य हैं, आप छोटा वाला है। कहे नहीं, तुम हमारा छोटा भैया है, मैं बड़ा लूंगा, तुम छोटा ले, तुम इतना बड़ा नहीं ले सकते, कितना देखो प्रभु। इस तरह से गुरु जी की सेवा करते थे। एक दिन दोपहर में भिक्षा करते करते बक्सा भिक्षा, सुंदर चेहरा मुरझा गया, एक बट के वृक्ष के नीचे उसको एक पेड़ की जड़ पर सिर रख करके और बक्सा रख करके पासी में और वहीं पर सो रहे हैं। प्रभुपाद कार से जा रहे हैं कहीं, उनके ड्राइवर एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा प्रभु प्रभु देखुन 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 ए विनोद देखुन एखने सुई आज हापड़ा मैदान में, उस मैदान में केवल एक ही पेड़ वहां और चारों तरफ में मैदान, उसमें सोए हुए देख करके प्रभु जी के आंखों में आंसू आ गए। बोले जी हमारे लिए हमारी सेवा के लिए इतना इससे पढ़े लिखे और इतना जमींदार घर का लड़का कितना कोमल और किशोर, और ये ऐसी सेवा कर रहा है, अब गुरु प्रभुपाद जी उसको क्या नहीं देंगे, अपनी सारी शक्ति संचार उसमें कर। इसीलिए गुरु महाराज जी इतना बड़ा महान हुए ऐसी गुरु सेवा करने से। यदि हम देखते हैं कि कृष्ण और सुदामा अपने गुरु जी की सेवा करने के लिए लकड़ी की गट्ठर अपने सिर पर रखकर वर्षा में रात भर जगे सोए बैठे रहे और अपने सिर पर वो गठरी लेकर के खड़े रहे, रात भर भीगते रहे, सवेरे शांति पूर्णिमा, अरे कृष्ण कहाँ सुदामा कहाँ, हम लोग यही हैं गुरु जी। बस एक ही साथ एक दृश्य में ऐसा शक्ति संचार किया, समस्त विद्याएं उनके हृदय में स्फूर्ति हो। आप लोग ने अरुणी और उपमन्यु इत्यादि की बातें सुनी है, कैसी कैसी अपने गुरु की सेवा की, तो हम अपने गुरु की ऐसी सेवा क्यों नहीं कर सकते हैं। ऐसा गुरु का सेवक रहना, गुरु की निष्ठा ही भजन मार्ग में एकमात्र, गुरु के प्रति जिसकी निष्ठा नहीं है वो कभी भी भजन नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी बात है, रात हो गई है, अंधकार भी हो गया है, इन लोगों को बहुत दूर जाना होगा, आरती का भी समय हो गया है। मैं समय अनुसार से यदि हो सकेगा तो कल और बाकी जो है सब एक विहंगम दृष्टि से मैं इसका वर्णन करूँगा। आप लोग इन सब विचारों को लेकर के जिनकी जैसी उनकी गुरु निष्ठा थी, आप लोग भी यदि आप लोगों की भी गुरु निष्ठा ऐसा हो जाए तो आप लोगों का जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए भजन का मूल रीढ़ मेरुदंड गुरु निष्ठा है। गुरु निष्ठा का माने यह नहीं है कि हमारे गुरु जी कोई गुरु जी और वैष्णव है और कोई संसार में है ही नहीं है और सबको लठिया मार करके सिर तोड़ लो, ये गुरु निष्ठा नहीं है। गुरु निष्ठा हमारे गुरु जी ने लिखा, वैष्णव की सेवा ही गुरु सेवा है। जो लोग वैष्णव की सेवा नहीं कर सकते वो गुरु की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए आजकल ऐसा कुछ आदर्श चल रहा है, गुरु जी प्रसन्न होंगे, सब गुरु भाइयों को निकाल दो कान बाहर कर और उनका पीठ पाट करके दुरुस्त कर दो, यहां से चले, ये सब गुरु सेवा नहीं। इसलिए वैष्णव की सेवा ही उनकी सेवा। कैसे कैसे अपने गुरु जी की सेवा की, अपने लेखनी के माध्यम से, अपने तन मन और धन से, ये सब चीजें हम लोग समय अनुसार में बतलाएंगे। आज यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। गुरुपाद पर मैं आप पर भी प्रसन्न हो, हमारे पर मैं प्रसन्न होकर के अपनी जैसी गुरु निष्ठा और सेवा की उत्कट भावना हमारे अंदर में भावना ये करें, ये हम लोग भी आगे अग्रसर होकर के उनकी वाणी का विश्व में उसी तरह से हम लोग प्रचार कर सकें। वंशा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः। उमा देवी ने एक ये लिखा था।